नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, क्रिप्टो कॉन्फिडेंशियल। नथानियल एलियासन की वित्तीय संस्मरणात्मक खोजी किताब है, जो 2021 से 2022 की क्रिप्टो उन्माद भरी अवधि के भीतर से देखा गया अनुभव प्रस्तुत करती है। इसका केंद्र पारंपरिक निवेश सलाह नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का मानवीय और तकनीकी सच है, जिसमें तेज मुनाफे की आशा, ऑनलाइन समुदाय, विकेंद्रीकृत वित्त और कम निगरानी एक साथ मिलते हैं। एलियासन बताते हैं कि पहले बच्चे के जन्म से पहले आर्थिक सुरक्षा पाने की उनकी बेचैनी उन्हें क्रिप्टो की ओर ले गई। कुछ ही समय में वे ऐसे कोड पर काम कर रहे थे जिसमें दूसरे लोगों के करोड़ों डॉलर के बराबर धन लगा था। किताब में NFT की असाधारण बिक्री, प्रभावशाली ऑनलाइन पहचान, हैकिंग का खतरा, कागजी संपत्ति और अंततः नुकसान सभी एक निजी यात्रा के हिस्से हैं। इसका उद्देश्य पाठक को क्रिप्टो की शब्दावली से चकित करना नहीं, बल्कि दिखाना है कि तेजी के बाजार में अवसर, जोखिम और आत्मभ्रम कैसे एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसलिए यह उद्योग का इतिहास कम और उसके व्यवहार, प्रोत्साहनों तथा कमजोरियों का प्रत्यक्ष विवरण अधिक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, तेजी के बाजार में आर्थिक दबाव और जल्दी अमीर बनने का आकर्षण। किताब की शुरुआती शक्ति यह है कि एलियासन क्रिप्टो में प्रवेश को केवल तकनीकी उत्सुकता या निवेश निर्णय के रूप में नहीं रखते। उनके सामने परिवार के विस्तार से पहले अधिक धन कमाने की समय सीमा थी। यह निजी दबाव उस मानसिक स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें असाधारण प्रतिफल का वादा सामान्य सावधानी से अधिक प्रभावशाली लगने लगता है। क्रिप्टो की तेजी में यही भावनात्मक पृष्ठभूमि व्यापक स्तर पर दिखाई देती है। लोग केवल किसी संपत्ति का मूल्य नहीं खरीदते, वे सीमित समय में जीवन बदल देने की संभावना खरीदते हैं। एलियासन का अनुभव बताता है कि तेजी का बाजार व्यक्ति को अपनी प्रारंभिक सफलता को कौशल का प्रमाण मानने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब कीमतें बढ़ रही हों, समुदाय उत्साहित हो और हर नई परियोजना अवसर जैसी दिखे, तब भाग्य, तरलता और वास्तविक क्षमता के अंतर को पहचानना कठिन हो जाता है। किताब इस प्रक्रिया को नैतिक उपदेश में नहीं बदलती, इसके बजाय यह दिखाती है कि पारिवारिक जिम्मेदारी और आर्थिक असुरक्षा जैसे वैध कारण भी व्यक्ति को ऐसे जोखिम लेने की ओर धकेल सकते हैं जिनकी पूरी कीमत वह नहीं समझता। इस विषय का व्यावहारिक महत्व यह है कि निवेशक अपने निर्णय के पीछे छिपे समय दबाव को पहचाने। यदि लक्ष्य बहुत जल्दी धन बनाना है तो जोखिम का आकलन अक्सर लाभ की कल्पना के अधीन हो जाता है। किताब का संकेत है कि किसी बाजार की कहानी से पहले अपनी जरूरत, अपनी समय सीमा और नुकसान सहने की सीमा को देखना जरूरी है। दूसरा, विकेंद्रीकृत वित्त में कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वास्तविक जवाबदेही। क्रिप्टो कॉन्फिडेंशियल विकेंद्रीकृत वित्त को केवल वित्तीय नवाचार के नारे के रूप में नहीं देखती। एलियासन का अनुभव इस तथ्य पर रोशनी डालता है कि सॉफ्टवेयर कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर बनी सेवाएं वास्तविक लोगों की बचत और जोखिम को नियंत्रित कर सकती हैं। उन्होंने कम समय में ऐसे कोड पर काम किया जिसमें बहुत बड़ी राशि जमा हो गई। यह अंतर, यानी कोड लिखने की गति और उसे संभालने वाली आर्थिक जिम्मेदारी, किताब की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनियों में है। विकेंद्रीकरण का अर्थ अक्सर मध्यस्थों को हटाना बताया जाता है, लेकिन किताब के अनुभव से समझ आता है कि मध्यस्थ हटने पर जवाबदेही स्वतः समाप्त नहीं होती। वह डेवलपरों, समुदाय संचालकों, टोकन निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं में बिखर जाती है जब कोई कमजोर कड़ी या संभावित सुरक्षा दोष सामने आता है। तो यह तय करना कठिन हो सकता है कि किसे सूचना दी जाए, किसे बचाया जाए और घबराहट से होने वाली बिक्री को कैसे रोका जाए। सार्वजनिक लेन देन और खुले ऑनलाइन समूह इस तनाव को और बढ़ाते हैं। एलियासन तकनीक विरोधी निष्कर्ष नहीं देते, वे बताते हैं कि नई वित्तीय संरचनाओं की क्षमता के साथ संचालन संबंधी अनुशासन भी चाहिए। उपयोगकर्ता के लिए मुख्य सबक है कि आकर्षक प्रतिफल से पहले कोड की समीक्षा, परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन मॉडल और संकट में निर्णय लेने की जिम्मेदारी को समझा जाए। बिना इन प्रश्नों के स्वचालन भरोसे का विकल्प नहीं बनता। तीसरा, कागजी संपत्ति, कम तरलता और मूल्य को धन समझने की भूल। किताब का एक केंद्रीय विचार यह है कि क्रिप्टो में दिखाई देने वाला धन हमेशा खर्च किए जा सकने वाले धन के बराबर नहीं होता। टोकन या NFT की कीमत बढ़ने पर किसी वॉलेट का मूल्य बहुत बड़ा दिख सकता है, पर उस मूल्य को वास्तविक मुद्रा में बदलना अलग समस्या है। खरीदारों की संख्या सीमित हो सकती है, बाजार पतला हो सकता है और बड़ी बिक्री स्वयं कीमत गिरा सकती है। इसलिए स्क्रीन पर दर्ज संपत्ति और सुरक्षित रूप से निकाली जा सकने वाली राशि के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। एलियासन के अनुभव में यह भ्रम सामाजिक रूप से भी मजबूत होता है। सार्वजनिक वॉलेट, ऑनलाइन घोषणाएं और तेजी से बढ़ती कीमतें सफलता का दृश्य प्रमाण बनती है। इससे व्यक्ति और समुदाय दोनों अपनी स्थिति को उपलब्ध नकदी से अधिक मजबूत मान सकते हैं। जब बाजार पलटता है तब वही संपत्ति बेचने की होड़ में फंस जाती है। किताब इस स्थिति को केवल बाजार की अस्थिरता नहीं बल्कि मूल्यांकन और व्यवहार की संयुक्त विफलता के रूप में दिखाती है। इस विश्लेषण का उपयोग क्रिप्टो तक सीमित नहीं है, लेकिन वहां यह विशेष रूप से दिखा है क्योंकि कई परिसंपत्तियों की कीमत कथा समुदाय और सीमित आपूर्ति से संचालित होती है। पाठक के लिए उपयोगी प्रश्न है, क्या इस संपत्ति का पर्याप्त खरीदार है, निकासी की लागत क्या है और क्या कीमत बड़े लेन देन को सह सकती है। एलियासन का विवरण याद दिलाता है कि लाभ तब तक अधूरा है जब तक उसे बिना विनाशकारी कीमत असर के वास्तविक रूप में बदला ना जा सके। चौथा, ऑनलाइन समुदाय इन्फ्लुएंसर पहचान और सूचना की असमानता। एलियासन का विवरण क्रिप्टो संस्कृति में डिस्कॉर्ड समूहों, न्यूज़लेटरों, सम्मेलनों और इन्फ्लुएंसर की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। इस दुनिया में सूचना केवल विश्लेषण नहीं होती, वह प्रतिष्ठा और पहुंच की मुद्रा भी बन जाती है। किसी नए टोकन, फार्मिंग अवसर या परियोजना के बारे में जल्दी जानना लाभ दे सकता है। इसी लाभ को अक्सर अल्फा कहा जाता है। पर किताब दिखाती है कि इस शब्द के पीछे निष्पक्ष शोध, निजी नेटवर्क, प्रचार और कभी कभी संदिग्ध हितों का मिश्रण हो सकता है। लेखक स्वयं एक बड़ी ऑनलाइन आवाज और सार्वजनिक व्यक्ति बनते हैं, इसलिए वे दर्शक और सहभागी दोनों की स्थिति से इस तंत्र को देखते हैं। सार्वजनिक प्रभाव व्यक्ति पर लगातार सक्रिय, आशावादी और जानकार दिखने का दबाव बना सकता है। दूसरी ओर अनुयायी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सफलता को जांचे बिना अपनी वित्तीय रणनीति का आधार बना सकते हैं। इससे सूचना की असमानता बढ़ती है क्योंकि बोलने वाले और सुनने वाले के जोखिम, पहुंच तथा निकासी क्षमता समान नहीं होते। यह विषय विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह क्रिप्टो के सामाजिक ढांचे को समझाता है। किसी ऑनलाइन समुदाय का आकार या उत्साह परियोजना की गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है। पाठक को यह देखना चाहिए कि जानकारी देने वाले के आर्थिक हित क्या है, क्या वो अपनी स्थिति और जोखिम बताता है और क्या विरोधी दृष्टिकोण को जगह मिलती है। किताब के अनुसार समुदाय सीखने का माध्यम हो सकता है, लेकिन वह सामूहिक उत्साह और देर से आने वालों के लिए जोखिम का माध्यम भी बन सकता है। अंत में हैकिंग, घबराहट और बिना सुरक्षा जाल वाले वित्तीय प्रयोग की कीमत। किताब में संभावित हैक और कमजोर कोड से जुड़ा तनाव क्रिप्टो जोखिम के ठोस रूप को सामने लाता है। एलियासन जिस स्थिति का वर्णन करते हैं उसमें तकनीकी कमजोरी केवल प्रोग्रामिंग की त्रुटि नहीं रहती, वह उपयोगकर्ताओं के धन, डेवलपर की प्रतिष्ठा और पूरे समुदाय के भरोसे के लिए तत्काल संकट बन जाती है। इस तरह की व्यवस्था में गलत निर्णय, धीमी प्रतिक्रिया या अस्पष्ट संवाद से बैंक रन जैसी सामूहिक बिक्री शुरू हो सकती है, भले ही वास्तविक नुकसान अभी पूरी तरह सामने न आया हो। यह किताब का महत्व उसके मानवीय पक्ष में है। सुरक्षा समस्या का सामना करने वाला व्यक्ति एक साथ कई दबावों में होता है, अपने धन की रक्षा, दूसरे लोगों के धन की जिम्मेदारी, सार्वजनिक छवि और कानूनी या नैतिक परिणाम। तेज गति वाली क्रिप्टो परियोजनाओं में अक्सर यही विरोधाभास होता है कि प्रयोग और नवाचार को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सुरक्षा, परीक्षण और संकट प्रबंधन धीमे तथा कम आकर्षक काम है। बाजार के अच्छे दिनों में यह कमी छिपी रह सकती है, पर संकट में वही निर्णायक बनती है। पाठक के लिए निष्कर्ष यह नहीं कि हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट असुरक्षित है, बल्कि यह है कि जोखिम को तकनीकी और संस्थागत दोनों स्तरों पर देखना चाहिए। क्या स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट हुआ है, क्या आपातकालीन प्रक्रिया है, क्या टीम अपनी सीमाएं बताती है और क्या उपयोगकर्ता कोई रकम की भरपाई मानकर चल सकता है। एलियासन का अनुभव दिखाता है कि बिना पारंपरिक सुरक्षा जाल वाले वित्त में सावधानी वैकल्पिक सुविधा नहीं मूल आवश्यकता है। निष्कर्ष में क्रिप्टो कॉन्फिडेंशियल उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो क्रिप्टो को या तो केवल भविष्य की वित्तीय क्रांति या केवल निरर्थक सट्टा मानकर समझना नहीं चाहते। नए पाठकों को इसमें विकेंद्रीकृत वित्त, टोकन, NFT, ऑनलाइन समुदाय और तरलता जैसे विषयों का सहज संदर्भ मिलेगा। पहले से क्रिप्टो का अनुभव रखने वाले पाठक तेजी के बाजार की भावनात्मक भाषा, सूचना की दौड़ और कागजी धन की अस्थिरता को पहचान सकेंगे। यह किताब किसी पोर्टफोलियो बनाने की व्यवस्थित मार्गदर्शिका नहीं है, इसलिए विस्तृत निवेश नियम, मूल्यांकन मॉडल या तकनीकी प्रशिक्षण चाहने वालों को इसे पूरक स्रोतों के साथ पढ़ना चाहिए। इसकी विशिष्टता लेखक की दोहरी भूमिका में है। वे बाहर से टिप्पणी करने वाले पत्रकार नहीं, बल्कि कोड लिखने वाले, निवेश करने वाले, सार्वजनिक प्रभाव पाने वाले और जोखिम झेलने वाले सहभागी हैं। इस कारण किताब उद्योग की संरचना को व्यक्तिगत निर्णयों, डर और आत्म औचित्य के साथ जोड़ती है। यह न तो क्रिप्टो के हर प्रयोग को खारिज करती है, न ही सफलता की कहानियों को अंतिम सत्य मानती है। इसके बजाय यह दिखाती है कि तकनीकी संभावना और वित्तीय उन्माद एक ही समय में मौजूद हो सकते हैं। व्यावहारिक लाभ चेतावनी संकेतों को पहचानने में है, जैसे अस्पष्ट जवाबदेही, कम तरलता, अत्यधिक प्रचार, सुरक्षा की अनदेखी और जल्दी लाभ पाने का दबाव। समान विषय की पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर इसकी अंदरूनी आत्मालोचनात्मक और तेज रफ्तार संस्मरण शैली है। पाठक को आंकड़ों की सूची नहीं बल्कि उस संस्कृति का निकट अनुभव मिलता है जिसमें जोखिम अक्सर अवसर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं नाथनियल एलियसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।